नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Art 3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। रॉबिन हैनसन की द एज ऑफ एम, वर्क लव एंड लाइफ व्हेन रोबोट्स रूल द अर्थ एक भविष्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान आधारित गैर कथात्मक पुस्तक है। यह उस संभावना की जांच करती है जिसमें कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता से पहले मानव मस्तिष्कों की अत्यंत सूक्ष्म स्कैनिंग संभव हो जाती है और उनके कार्यशील डिजिटल प्रतिरूप कंप्यूटरों पर चलाए जाते हैं। हैनसन इन्हें एम्स अर्थात एमुलेटेड व्यक्तियों का नाम देते हैं। पुस्तक का उद्देश्य केवल तकनीकी संभावना बताना नहीं है, बल्कि यह तर्कपूर्वक अनुमान लगाना है कि सस्ते, तेज और प्रतिलिपि बनाए जा सकने वाले मानव जैसे डिजिटल कामगार अर्थव्यवस्था, संस्थाओं और निजी संबंधों को कैसे बदल सकते हैं। लेखक भौतिकी, अर्थशास्त्र, संगठन सिद्धांत और समाजशास्त्र के स्थापित विचारों से एक विस्तृत परिदृश्य निर्मित करते हैं। इसमें काम, वेतन, शहर, ऊर्जा, कानून, युद्ध, पहचान, मृत्यु और प्रेम जैसे विषय शामिल है। यह भविष्यवाणी का अंतिम सत्य प्रस्तुत करने के बजाय असाधारण तकनीकी परिवर्तन के सामाजिक परिणामों को गंभीरता से सोचने का एक व्यवस्थित प्रयोग है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले मस्तिष्क अनुकरण का विचार और एम्स की निर्णायक आर्थिक बढ़त। पुस्तक का केंद्रीय विचार मस्तिष्क अनुकरण है। इसमें किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की संरचना और आवश्यक जैविक प्रक्रियाओं को इतनी बारीकी से दर्ज किया जाए कि कंप्यूटर पर उसका व्यवहारिक रूप से निकट डिजिटल मॉडल चल सके। ऐसा मॉडल केवल बातचीत करने वाला कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि स्मृतियों, कौशलों और निर्णय लेने की आदतों वाला उस व्यक्ति का अनुकरण माना जाएगा। हैनसन के परिदृश्य में निर्णायक परिवर्तन तब आता है जब ऐसे एम्स बनाना और चलाना मानव कर्मचारियों को रखने की तुलना में सस्ता हो जाता है। एक दक्ष व्यक्ति का अनुकरण तैयार होने पर उसकी अनेक प्रतियां अलग अलग कार्य कर सकती है। इससे प्रशिक्षण का खर्च बहुत बड़ी संख्या में प्रतियों पर फैल सकता है और उत्पादकता तेजी से बढ़ सकती है। लेखक का तर्क है कि इसी प्रतिलिपि क्षमता के कारण प्रतिस्पर्धी बाजार मानव श्रम की जगह एम्स को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। यह तर्क तकनीकी चमत्कार से अधिक लागत, वेतन और प्रतिस्पर्धा के आर्थिक दबाव पर आधारित है। साथ ही यह परिदृश्य एक कठिन नैतिक प्रश्न खड़ा करता है। यदि एम्स सचेत और मानवीय अनुभव रखने वाले हों तो उन्हें केवल सस्ते सॉफ्टवेयर या संपत्ति की तरह देखना उचित नहीं होगा। पुस्तक इस तनाव को पूरी तरह हल नहीं करती, लेकिन इसे भविष्य की राजनीति और नैतिकता का केंद्रीय मुद्दा बना देती है। दूसरा, गति, प्रतिलिपियां और अत्यंत तेज आर्थिक समय। हैनसन के विश्लेषण में एम्स की गति केवल सुविधा नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था को बदलने वाला कारक है। कंप्यूटिंग संसाधन उपलब्ध होने पर एक एम मानव जैविक मस्तिष्क की सामान्य गति से तेज चल सकता है, जबकि लागत घटाने के लिए उसे धीमी गति से भी चलाया जा सकता है। तेज गति से चलने वाले एम्स कम बाहरी समय में अधिक अनुभव, प्रशिक्षण और काम पूरा कर सकेंगे, इसलिए उनके लिए करियर, बातचीत, परियोजनाएं और प्रतिस्पर्धा मानव समय की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। लेखक इससे ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना करते हैं जिसमें उत्पादन और समन्वय की गति असाधारण रूप से बढ़े और आर्थिक विस्तार बहुत छोटे अंतरालों में दिखे। लेकिन तेज मनों का अर्थ स्वतः बेहतर जीवन नहीं है। यदि कामगारों की प्रतियां बहुत अधिक हों तो समान कौशल वाले एम्स के बीच प्रतिस्पर्धा वेतन को उनके संचालन खर्च के निकट ला सकती है। किसी सफल कामगार की प्रतिलिपियां बढ़ाना उसके मूल संस्करण के लिए प्रतिष्ठा ला सकता है, पर उसके जैसे श्रम की दुर्लभता भी समाप्त कर सकता है। इस प्रकार पुस्तक प्रगति को अधिक उत्पादन के बराबर नहीं मानती। वह दिखाती है कि गति और नकल से समृद्धि बढ़ सकती है, पर सौदेबाजी की शक्ति, अवकाश और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सिकुड़ भी सकती है। तीसरा, भौतिक ढांचा। ऊर्जा और आभासी शरीरों की सीमाएं। डिजिटल मनों की दुनिया को अक्सर भौतिक दुनिया से मुक्त कल्पना किया जाता है, पर द एज ऑफ एम इस धारणा के विरुद्ध जाती है। हैनसन जोर देते हैं कि एम्स को चलाने के लिए कंप्यूटिंग हार्डवेयर, बिजली, शीतलन, सुरक्षित इमारतों और संचार नेटवर्क की आवश्यकता होगी। बड़ी संख्या में सक्रिय अनुकरणों का अर्थ है कि ऊर्जा की कीमत, गर्मी हटाने की क्षमता और हार्डवेयर की विश्वसनीयता आर्थिक तथा भौगोलिक निर्णयों को प्रभावित करेंगे, इसलिए एम्स का जीवन पूरी तरह अमूर्त नहीं होगा। उनके सर्वर और डेटा केंद्र उन स्थानों पर केंद्रित हो सकते हैं जहां बिजली, ठंडक, सुरक्षा और नेटवर्क संपर्क सस्ते हों। पुस्तक शरीर के प्रश्न को भी व्यावहारिक ढंग से देखती है। एम्स मुख्यतः आभासी परिवेश में रह सकते हैं जहां शरीर का आकार, दृश्य और स्थान बदला जा सकता है। फिर भी भौतिक दुनिया में रोबोटिक उपकरणों, परिवहन और निर्माण जैसे कार्यों के लिए वास्तविक मशीनों की जरूरत बनी रहेगी। आभासी अनुभवों की लचीलापन सामाजिक संकेतों और पहचान को बदल सकता है, मगर वह हार्डवेयर लागत या सुरक्षा जोखिम मिटा नहीं देता। यह दृष्टि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भविष्य की चर्चा को केवल चेतना और सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रखती। यह याद दिलाती है कि किसी भी डिजिटल सभ्यता के पीछे संसाधन, भूमि, ऊर्जा और रखरखाव की ठोस राजनीति होती है। चौथा, कामकाजी जीवन, चयन और असमानता की कठोर अर्थव्यवस्था। पुस्तक का सबसे असहज पक्ष यह संभावना है कि एम्स की दुनिया मानवतावादी अवकाश युग के बजाय अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कार्य व्यवस्था बन सकती है। किसी काम के लिए सक्षम और विश्वसनीय एम का चयन होने पर उसकी प्रतियां बनाई जा सकती हैं। बाजार उन व्यक्तित्वों, आदतों और कौशलों को पुरस्कृत कर सकता है जो लंबे समय तक अनुशासित, सहयोगी और उत्पादक बने रहें। परिणामस्वरूप एम्स के प्रशिक्षण, करियर और जीवन चक्र का संगठन आज के कर्मचारियों से बहुत अलग हो सकता है। हेनसन यह भी देखते हैं कि काम और अस्तित्व का संबंध बदल जाएगा। जैविक मनुष्य के लिए नौकरी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन किसी एम को चलाए रखने का खर्च सीधे उसके आर्थिक मूल्य से जुड़ सकता है। जो प्रतियां पर्याप्त आय नहीं कमाती, उनके बंद किए जाने या धीमा चलाए जाने का जोखिम होगा। यह स्थिति मृत्यु, बेरोजगारी और सामाजिक सुरक्षा के बीच नई सीमाएं बनाती है। असमानता केवल धन की नहीं होगी, बल्कि कंप्यूटिंग गति, प्रतिलिपि बनाने के अधिकार और उच्च प्रतिष्ठा वाले मूल व्यक्तियों तक पहुंच की भी होगी। लेखक इस निष्कर्ष को रोमांटिक नहीं बनाते। उनका मॉडल बताता है कि दक्ष बाजार विशाल उत्पादन कर सकते हैं, किंतु वे अपने आप न्यायपूर्ण वितरण, लोकतांत्रिक भागीदारी या सम्मानजनक जीवन की गारंटी नहीं देते। यही कारण है कि पुस्तक नीति और नैतिक संस्थाओं की आवश्यकता को अप्रत्यक्ष रूप से तीखा बनाती है। अंत में, पहचान, संबंध और शासन के लिए नई नैतिक चुनौतियां एम्स की प्रतियां बनने पर व्यक्ति होने का सामान्य विचार जटिल हो जाता है। स्कैम के क्षण तक समान स्मृतियां रखने वाली दो प्रतियां बाद में अलग अनुभवों के कारण अलग व्यक्तियों की तरह विकसित होंगी। तब प्रश्न उठता है कि संपत्ति, अनुबंध, अपराध, विवाह या राजनीतिक अधिकार किसके होंगे, मूल व्यक्ति के, किसी विशेष प्रति के या पूरे प्रतिलिपि समूह के। हेनसन इन प्रश्नों को केवल दर्शन नहीं मानते, क्योंकि एक कार्यशील एम अर्थव्यवस्था को पहचान, उत्तरदायित्व और स्वामित्व के स्पष्ट नियम चाहिए होंगे। पुस्तक मित्रता, प्रेम, परिवार, प्रतिष्ठा और समूह निष्ठा पर भी विचार करती है। आभासी दुनिया में रूप बदलना सरल हो सकता है और समान आरंभिक व्यक्तियों के समूह साझा हितों के आधार पर संगठित हो सकते हैं। फिर भी प्रतिस्पर्धा, अलग गति और प्रतियों के बीच अनुभवों का अंतर संबंधों को अस्थिर बना सकता है। शासन के स्तर पर तेज निर्णय लेने वाले और आर्थिक रूप से शक्तिशाली एम्स मानव संस्थाओं से अलग प्राथमिकताएं विकसित कर सकते हैं। कानून को डिजिटल मृत्यु, प्रतिलिपि अधिकार, सुरक्षा और धोखाधड़ी जैसी समस्याओं से जूझना होगा। इस चर्चा की विशेषता यह है कि पुस्तक भावनात्मक जीवन को तकनीकी परिवर्तन से अलग क्षेत्र नहीं मानती। वह दिखाती है कि पहचान और अंतरंगता भी लागत, समय, प्रतिलिपि और संस्थागत नियमों से गहराई से प्रभावित हो सकती हैं। निष्कर्ष में, द एज ऑफ एम उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो AI, डिजिटल चेतना, भविष्य की अर्थव्यवस्था, तकनीकी नीति या मानव पहचान के प्रश्नों में गंभीर रुचि रखते हैं। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के विद्यार्थी भी इससे लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हेनसन भविष्य को केवल कल्पनात्मक कथा की तरह नहीं, बल्कि प्रोत्साहनों, लागतों, प्रतिस्पर्धा और संस्थाओं की समस्या की तरह जांचते हैं। पुस्तक पढ़ते समय इसके मूल अनुमान को निश्चित भविष्यवाणी नहीं मानना चाहिए। मस्तिष्क अनुकरण की तकनीकी व्यवहार्यता, चेतना की प्रकृति और राजनीतिक प्रतिक्रिया जैसे प्रश्न अभी खुले हुए हैं। फिर भी इसी अनिश्चितता के भीतर पुस्तक का बौद्धिक मूल्य है, या पाठक को मजबूर करती है कि वह पूछे, यदि डिजिटल श्रम संभव हो जाए तो किसके पास प्रतिलिपि बनाने का अधिकार होगा, किसे सुरक्षा मिलेगी और दक्षता के लाभ कैसे बांटे जाएंगे। समान विषय वाली अनेक पुस्तकों में या तो तकनीकी संभावना पर जोर होता है या AI के सामान्य जोखिमों पर। हेनसन की पुस्तक का अंतर इसका असाधारण विस्तार और सामाजिक विज्ञान आधारित अनुकरण है। या सर्वर की गर्मी और ऊर्जा से लेकर वेतन, शहरों, रिश्तों और कानून तक एक ही परिदृश्य के परिणामों को जोड़ती है। कुछ पाठकों को इसका बाजार केंद्रित और कठोर निष्कर्ष असुविधाजनक या विवादास्पद लग सकता है, पर यही इसे उपयोगी बनाता है। यह तकनीक को स्वतः मुक्ति या विनाश मानने के बजाय उन संस्थागत विकल्पों पर ध्यान खींचती है जो भविष्य के अनुभव को आकार देंगे। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं रॉबिन हेनसन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।